वचन। नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, जान गया मैं दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ तेरा, पाप क्षमा हुआ तेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, है जो यीशु से भरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों यूहन्ना रचित सुसमाचार से अपने अध्ययन को जारी किए हुए हैं और पिछले अध्ययन में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, इस वक्त जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों और हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके वचन हमारे कानों में से होकर हृदय तक पहुंचने पाए और हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो पिता परमेश्वर, हम निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति में होकर उन वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो दुखी और निराश हैं, जो चिंता और परेशानी में हैं, जो बीमारी और तकलीफ में हैं, जो किसी न किसी कारण से अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, प्रभु जी आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन पर अपना अनुग्रह प्रदान करें ताकि वे भी आपके वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करें, अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें और होने दें कि अपने जीवन के द्वारा वे आपको आदर दे सकें, आप पर भरोसा रख सकें और इस बात को जानने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके हर एक जरूरतों को समझते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त हम हर एक श्रोता भाई बहनों को आपकी निकटता में लाते हैं। प्रभु जी आज आप विशेष रूप से हम में से प्रत्येक से बातचीत करें और अपनी महिमा हमारे जीवन से लें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने यूहन्ना के अध्ययन में अब तक यीशु के 2 चमत्कार देखे हैं, पानी को दाखरस में बदलना और सरकारी अफसर के पुत्र को रोग से मुक्ति देना। अब हम यीशु का 3रा चमत्कार देखेंगे। यीशु सप्त के दिन चंगाई का काम करता है जिसके कारण यहूदी धर्मगुरु उसका विरोध करते हैं, वरन उसे घात करना भी चाहते हैं। मित्रों, बैतसैदा के कुंड पर यीशु 38 वर्ष के रोगी को चंगा करता है। यह चमत्कार यीशु के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ क्योंकि धर्मगुरु अब उसको मारने की ठान चुके थे और उसके क्रूसीकरण पर ही उन्होंने चैन की सांस ली। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 16 से 18 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सप्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्त का दिन इस द्वंद का कारण था। उनकी ईर्ष्या अधिक भड़क गई क्योंकि यीशु ने कहा, जिसे हम मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 27 पद में पाते हैं, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। मित्रों, उनका सोचना यह था कि यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। और कुछ का कहना है कि बाइबल में यीशु को परमेश्वर नहीं कहा गया है। मित्रों, जहां तक मैं सोचता हूं, वे या तो अज्ञानी हैं या अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप यीशु और बाइबल को स्वीकार भले ही न करें, परंतु ये शब्द अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, इसका आशय क्या है? अध्याय 5 के आरंभ में यहूदियों के एक पर्व का उल्लेख है और यह कौन सा पर्व है? यह फसा का पर्व है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसके 16 पद में 3 मुख्य पर्वों का उल्लेख है। लिखा है, वर्ष में तीन बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। परंतु यहां मुख्य बात पर्व की नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1-3 पद में। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ स्थान है मंदिर का भेड़ द्वार और वहाँ का जलकुंड जो बेतसैदा कहलाता है। वहाँ अत्यधिक भीड़ लगी रहती थी जो रोगी मनुष्यों की भीड़ थी। मैं एक बार बच्चों के अस्पताल में गया जहाँ दुर्बल फेफड़े और तपेहिक से ग्रसित बच्चों का उपचार किया जाता था। उन्होंने ईस्टर कार्यक्रम का आयोजन किया था और एक छोटे बच्चे ने इस संपूर्ण अध्याय के 47 पद को मौखिक रूप से सुनाया। उस बच्चे ने एक गलती की, वह अंग्रेजी में बोल रहा था और उसने दुर्बल के लिए वही आवाज जो शब्द काम में लिया, उसका अर्थ है महत्वपूर्ण। मेरे विचार में उसकी यह गलती अर्थपूर्ण थी। उनमें एक मनुष्य ऐसा था जिसके कारण यीशु को वहां आना पड़ा। वे यीशु के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थे। अब देखिए कि वहां क्या होता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां रोगी जलाशय में पानी के हिलाए जाने की प्रतीक्षा करते थे कि उस समय उसमें स्नान करके रोग मुक्ति पाए। उनका मानना था कि स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता है। मेरे विचार में वे मानसिक रोगी थे। आज भी अनेक ऐसे रोगी हैं और वे विश्वास की चंगाई देने वालों के पास जाते हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी चंगाई परिपूर्ण होती है या नहीं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि यीशु द्वारा दी गई चंगाई अस्थाई होती है, जैसी उस व्यक्ति ने पाई जो बैतसैदा के कुंड के निकट था। हम यूहन्ना 5 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। मित्रों यह व्यक्ति 38 वर्ष से रोगी था। मेरे विचार में वह सबसे अधिक गंभीर दशा में था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक थी। उसके रोग का कारण पाप था। वह बेचारा वहां पानी को ही निहारता रहता होगा कि कब पानी हिलाया जाए और वह उसमें डुबकी लगाए। परंतु उसकी दशा ऐसी थी कि वह सबसे पहले वहां पहुंचने में असमर्थ था। इसमें संदेह नहीं कि उसने वहां अनेक रोगियों को निरोग होते हुए अर्थात रोग से छुटकारा पाते हुए देखा था। हमारा प्रभु यह जानता था और इसलिए वह वहां पर था। देखिए यीशु उससे कैसे व्यवहार करता है। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मित्रों ध्यान दीजिए, कैसा विचित्र प्रश्न है। क्या किसी रोगी से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है? इस प्रश्न के पीछे भी यीशु के 2 कारण थे। पहला, वह उसमें आशा जगाना चाहता था। उसका रोग असाध्य था और वह पूरी तरह निराश था। दूसरी बात है, यीशु चाहता था कि वह जलाशय को नहीं परंतु यीशु को निहारे, क्योंकि वह किसी को नहीं देखता था। उसकी दृष्टि केवल कुंड के पानी पर लगी रहती थी। यीशु की वाणी सुनकर वह सचेत हुआ और उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे मित्रों, आज हमारे भी ठीक यही दशा है। हम में से अनेक किसी भावना प्रवण घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे मसीह को अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई भावनात्मक उथल पुथल नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है। उन्हें सांसारिक गतिविधियों ने ऐसा मोहित किया हुआ है कि वे मसीह को देख नहीं पा रहे हैं। मित्रों, कुछ मनुष्य अन्यों के भावनात्मक अनुभव के कारण निराश हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव एवं असामान्य अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने ऐसे अनेक मनुष्यों से बातचीत की है, उनके ध्यान का केंद्र अनुचित घटना, अनुचित व्यक्ति या अनुचित वस्तु है। क्या आप ऐसी किसी असामान्य घटना या अनुभव की प्रतीक्षा में हैं? थिसलोनी के विश्वासियों ने अपना ध्यान मूर्तियों पर से हटाकर प्रभु यीशु मसीह में लगाया था, जिसे हम पहला थिसलोनिकियों 1 अध्याय उसके 9 पद में पाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उस मनुष्य को आश्चर्य हुआ होगा कि कोई उसे ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये कितना अभागा मनुष्य है। प्रभु, मैं चाहता तो हूँ, परंतु जब पानी हिलाया जाता है तब मेरी सहायता के लिए कोई नहीं होता कि मुझे जल तक ले जाए कि डुबकी लगाऊं। वह शायद सोच रहा था कि यीशु उसे पानी तक ले जाएगा, परंतु यीशु वहां से हटाना चाहता था। उसने ज्यों ही यीशु को निहारा त्यों ही कुछ हुआ। यूहन्ना 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उसे वहां स्थान छोड़ना था, उसका रोग फिर कभी नहीं लौटेगा, अतः वह अपना बिस्तर लेकर वहां से चला जाए। तब हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय उसके 9 से 13 पद में लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सप्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सप्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझको कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। उसने तो यीशु की आज्ञा का पालन किया, परंतु धर्म के ठेकेदारों ने उसे झिड़का कि वह सप्त के दिन बोझ उठा रहा था। वे उसकी चंगाई के प्रमाण को नहीं देख रहे थे। यीशु चमत्कारी रूप से अदृश्य हो गया, क्योंकि उस रोगी को पता ही नहीं था कि उसका चंगा करने वाला कौन है। तब हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय उसके 14 से 16 पद में, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सप्त के दिन करता था। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुंड के पास तो यीशु ने उसके शरीर को चंगा किया था, परंतु अब वह मंदिर में उसकी आत्मा को चंगा करता है। उसके रोग का कारण उसका पाप था। वह अशक्त मनुष्य एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को देखता है। आप यह न भूलें कि वहां और भी रोगी थे। आज अनेक मनुष्य उद्धार से रहित हैं, अर्थात वंचित हैं। क्या यीशु उनका उद्धार करना नहीं चाहता है? वह तो चाहता है, परंतु वे उसे नहीं निहारते, उसकी ओर नहीं ताकते। वे तो किसी असामान्य घटना या अनुभव की प्रतीक्षा में हैं। मित्रों, यहां पर यहूदी से यूहन्ना का अभिप्राय है रूढ़िवादी धर्मगुरु। उन्होंने यीशु को घात करने की ठान ली। हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 5 के 17 पद में लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। ध्यान दीजिए, मनुष्य पाप के गर्त में पड़ा है, तो प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर कैसे विश्राम कर सकते हैं? परमेश्वर ने जगत की सृष्टि करने के बाद विश्राम किया था, परंतु मनुष्य के पतन के बाद वह विश्राम नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य बैल की नाई खड्डे में गिर पड़ा था। हम यूहन्ना 5 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। ध्यान दें, उन्हें यीशु के क्रूसीकरण के बाद ही शांति मिली। पुत्र का अधिकार, अब हम देखते हैं यीशु अपने बारे में तीन तथ्य स्पष्ट करता है। वे ये तीन तथ्य हैं जो हमारे सुसमाचार प्रचार को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:19 में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहाँ पर पिता परमेश्वर और पुत्र मसीह यीशु में सामंजस्य तथा सहकारिता है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था कि वह परमेश्वर है, वह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है, उसमें और परमेश्वर पिता में घनिष्ठ संबंध है। तब हम देखते हैं यूहन्ना 5:20 में, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। अब दूसरी बात है जिसे हम यूहन्ना 5:21 में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यीशु जिसे चाहे जीवन दे सकता है। यदि पिता किसी को मृत्यु से पुनः जीवित करे तो यीशु भी उन्हें पुनः जीवित करेगा। पौलुस और पत्रस ने मुर्दों को जिलाया था क्योंकि मसीह यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दिया था, परंतु यह वरदान प्रेरितों के साथ ही समाप्त हो गया। यीशु ने मुर्दे जिलाए क्योंकि वह परमेश्वर था और प्रेरित ने उसी के नाम से मुर्दे जीवित किए थे। और अब हम तीसरी बात को देखते हैं, यूहन्ना 5:22 में लिखा हुआ है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मसीह का वचन सुनकर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि वह एक दिन सबका न्याय करेगा। विश्वासियों का न्याय अलग होगा कि वे अपने कामों के फल को प्राप्त करें, जैसा कि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:10 में कहा है। अविश्वासियों का न्याय श्वेत सिंहासन के समक्ष होगा। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:11 में, यीशु पहली बार न्याय करने नहीं आया था, परंतु जब वह फिर आएगा तब न्याय करेगा। परमेश्वर ने न्याय करने का काम उसे सौंप दिया है। हम देखते हैं यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:23 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अपने इस तीन अधिकारों के कारण यीशु कहता है, जिसे हम यूहन्ना 5:24 में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मित्रों, यीशु का यह कथन वर्तमान काल में है, भविष्य में नहीं, यह की महान प्रतिज्ञा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिज्ञा किसने दी। यीशु ने अपने बारे में हमें तीन तथ्य स्पष्ट किए हैं, वह परमेश्वर है 19 में, वह मृतकों को जिलाने का अधिकार रखता है 21 में, और वह न्याय करेगा 22 में। यह क्या ही अद्भुत वचन है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी इन तीन तथ्यों को जानने और समझने की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं भी प्रभु यीशु पर पूर्ण रीति से भरोसा कर सकें कि वही परमेश्वर है जो मृतकों में से जिला सकता है, जो न्याय करेगा, और वह परमेश्वर है जो मुझे और आपको हमारे पापों से उद्धार दे सकता है। आज वह आपकी भी चिंता करता है, क्योंकि वह आपको उद्धार देना चाहता है। क्या आज आप उसके द्वारा दिए गए अर्थात प्रबंध किए गए उस उद्धार को पाना चाहते हैं? मेरे मित्रों, जिस प्रकार से उसने उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को ठीक किया, ठीक उसी प्रकार वह आपके जीवन के उन गंदगियों को भी साफ कर सकते हैं, वह आपको भी एक नया जीवन दे सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना है कि आप उसकी ओर निहारें, उस पर विश्वास करें कि वह आपको उद्धार दे सकता है, वह आपको शांति दे सकता है, वह आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा दे सकता है। क्या आज आप परेशानियों में हैं? क्या आज आप तकलीफ में हैं? क्या आज आप पापमय जीवन जी रहे हैं? क्या आज आप उन सभी बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं? मेरे प्रिय, यदि आज आप ऐसा पाना चाहते हैं तो निश्चय जाने कि प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस अध्ययन के समापन से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, ताकि प्रभु का कार्य जिस प्रकार से उस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में घटित हुआ, हमारे जीवन में भी घटित होने पाए। आइए हम विनती करें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों ने जिन्होंने आपके वचन को सुना है, उनके जीवन की हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर आप उनसे बातचीत किए हैं। पिताजी, इस समय जो अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने जीवन के उन रोग से, उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को आपकी निकटता में लाना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक के जीवन को आप स्पर्श करें और उनके हर एक तकलीफों से उन्हें छुटकारा दें। और इन सब से बढ़कर हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनके जीवन में उद्धार का आनंद दें, जो सही रूप में आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। प्रभु आप उनसे बातचीत करें, उनकी सहायता करें, ताकि वे हर एक समस्याओं से आजाद होकर आप पर भरोसा कर सकें, आपसे प्रेम कर सकें और अपने जीवन में आपको जगह देने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों के लिए और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमसे हर एक से बातचीत किया है कि आप परमेश्वर हैं और आप मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। इतना ही नहीं, आप उद्धार देने का सामर्थ्य रखते हैं, चंगाई देने का सामर्थ्य रखते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में, यह गीत है अब मेरा, हाँ यह गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, निशान।